نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أمید ہے کہ کل کا لیکچر سننے کے بعد آپ نے ضرور قربانی کے بارے میں سوچا ہوگا، اور اگر آپ خود بھی کر سکتی ہیں اپنی طرف سے اور افورڈ کر سکتی ہیں تو کیوں نہیں، جہاں ہم اتنے سوٹ بنا سکتے ہیں، اتنے مہنگے جوتے خرید سکتے ہیں، ایون آرٹیفیشل جولری بہت مہنگی خرید سکتے ہیں، تو قربانی کرنا تو کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، شوق کی بات ہے. تو کل کی باتوں سے امید ہے کہ آپ کو کچھ شوق ہوا ہوگا، اسی طرح شکر گزاری پہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ زندگی سے ناشکری کے رویے اور کلمات نکال لیں. دیکھیں، جتنا جتنا انسان کو احساس ہوتا جاتا ہے نا کہ اس پر اس کے رب کی کتنی کرم نوازیاں ہیں، اتنا ہی زیادہ وہ شکر گزار ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ عاجزی اختیار کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے. اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک میرا رب ہے، میں نے اس سے دور نہیں بھاگنا، اس نے تو میرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں، میں کیسے اس سے دور جاؤں. یہی چیز اس کو توبہ پہ ابھارتی ہے، کہ توبہ بھی انسان تبھی کرتا ہے نا جب وہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر اتنی کرم نوازیاں کی، وہ تو میرا محسن ہے اور میں نے کیا کیا جواب میں. جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے نا، یہ پشیمانی، یہ ندامت کہ میں کیا کرتی رہی ہوں، میں نے کیوں اتنی نافرمانیاں کی، اس نے میرے ساتھ یہ کیا اور میں نے جواب میں کیا کیا، یہ جو گلٹ اندر پیدا ہوتی ہے نا، یہ ہوتی ہے جسٹ، یہ ہوتی ہے پہلی سیڑھی توبہ کی. اگر یہ چیز نہیں نہ آئی تو پھر توبہ روکھی پھیکی توبہ ہے، وہ اصل توبہ نہیں ہے جو ریکوائرڈ ہے. تو اس بات کو سمجھیں کہ توبہ کیا چیز ہے، اور یہ پیارے دن دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ لیں ایک اور موقع دے دیا توبہ کرنے کا، ایک اور موقع دے دیا اپنی طرف پلٹنے کا، کیونکہ توبہ اصل میں اللہ کی طرف پلٹنا ہے. جب انسان اتنا شرمندہ ہو جائے، جب انسان اتنی گلٹ فیل کرے، جب انسان اتنا اپنے اندر ایک ندامت کا احساس رکھے، تو پھر کیا ہوگا، وہ دور تو نہیں بھاگے گا، وہ تو اپنے محسن کے قریب جانا چاہے گا، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ تو بہت برا ہو گیا مجھ سے. یہ احساس ہمارے اندر آنا ضروری ہے، اور اس احساس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کتنے زیادہ احسانات ہیں. منہ سے تو ہم ٹھیک ہے بولتے رہتے ہوں گے شاید کہ ہاں اللہ کے بڑے احسانات ہیں، ہاں وہ بڑا مرتے بڑی نعمتیں دی، لیکن شاید احساس نہیں ہے اس طرح، کہ ہمیں احساس انہی چیزوں کا ہوتا ہے جو ہم سے چھن جاتی ہیں. اکثر ایسا ہے جو ہمارے پاس ہوتی نا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کوئی نعمت ہے. جس دن بجلی چلی جائے اس دن آپ کو بڑا احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت، جس دن نلکے میں پانی نہ آئے اس دن آپ کو لگتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت تو یہی تھی نا. آپ جس دن آپ کی گاڑی خراب ہو جائے اس دن آپ کو لگتا ہے ہائی یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنے روز ہم سفر کرتے تھے آرام سے. تو اکثر ہمیں نعمتوں کا احساس ان کے چھن جانے پہ ہوتا ہے. صحت چلی جائے نا، بیماری ہو جائے تو تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں صحت کیا تھی. تو ہم اتنے ناشکرے ہیں، ہم اس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگنور کرنے والے ہیں کہ اس کی وجہ سے پھر یہ احساس بھی نہیں ہے جنم لیتا کہ ہمیں توبہ کرنی ہے. کیونکہ کل ہم نے شکر پہ بات کی تھی نا، جس دن آپ کے اندر احساس آ گیا نعمتوں کا، اس دن شکر بھی آئے گا، اور اس دن ہی یہ احساس آئے گا کہ میں کیا کر بیٹھی، یہ میں نے کیا کر دیا. ایسے کوئی انسان کسی کے ایک دم اس کو پتا چلے کہ یہ جو آج تک مجھے سب چیزیں دی ہوئی تھی یہ فلاں نے دی ہیں، उसको एकदम उसके ऊपर ये बात का इंकशाफ हो और उसने उसके साथ बड़ा बुरा सलूक किया, तो तब उसको होता है कि ये क्या मैंने किया, मैंने तो बहुत बुरा कर दिया। अब उसको अपने बुरा करने का एहसास किस दिन हुआ? जिस दिन उसको ये पता चला कि ओ ये सारा कुछ तो जो मुझे मिल रहा था वहीं से आ रहा था। जिस दिन हमें अल्लाह ताला के लिए ये बात दिल के अंदर रहस्य हो जाएगी ना कि अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है और जवाब में मैंने क्या किया। एक एक उधर से आ रहा है, हमारी तरफ तो हमारा हाल ही है, वन वे ट्रैफिक है, अल्लाह की तरफ से तो नेमते लिए चले जा रहे हैं, लेकिन खुद क्या देना है? कुछ नहीं। खुद अपनी क्या जिम्मेदारी? कोई जिम्मेदारी नहीं, और कोई महसूस ही नहीं करता कि हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। कोई यकीन जाने जब लोगों को ये कहा जाता है, और हम अपने आप में भी देखें, हम खुद भी क्या हैं, उस तरह हमें जिम्मेदारी का एहसास नहीं है कि जितनी नेमतें हमें मिल रही हैं इसके बाद तो हमें एक लम्हे के लिए भी सर उठाना नहीं चाहिए था। और हमारी हरकतें क्या हैं उसके बाद, हमारी नाफरमानियों के क्या हाल हैं, हमारी गफलतों के क्या हाल हैं, हमारे अल्लाह को भूल जाने का क्या हाल है। अक्सरियत वक्त में तो हम भूले ही रहते हैं, कभी कभी अल्लाह याद आता है, इवन नमाज में अल्लाह को भूले रहते हैं, पूरी नमाज पढ़ लेते हैं लेकिन अल्लाह की याद नहीं आती, यकीन जाने नहीं आती। हाँ, सारा वक्त कोई और चीजें ही दिमाग में घूमती रहती। मुनाफिकीन भी नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन उनकी नमाज का भी अल्लाह ताला ने क्या हाल बयान फरमाया कुरान में, अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं नमाज। शायद हमारी नमाजें तो कुल्ली तौर पे ही होती हैं, कब कब अल्लाह अकबर कहा और सलाम फेरने पे याद आता है कि अच्छा नमाज खत्म हो गई। और बहुत सारे तो ऐसे हैं कि वो इस इतने को भी गवारा नहीं करते कि वो मुसल्ले पे ही खड़े हो जाए। अल्लाह अकबर। तो एक तरफ की ट्रैफिक चल रही है, उधर से आता जा रहा है, और हमारी तरफ से क्या है? मुसलसल गफलत, मुसलसल भूले में, मुसलसल कहीं और ही गुम है, और इस काबिल ही नहीं समझते, अस्तग़फिरुल्लाह, इस काबिल ही नहीं समझते अल्लाह की ज़ात को कि उसके लिए भी हमें कुछ करना है, कुछ जान लगानी है, कुछ उसकी तरफ पलटना है, कुछ तवज्जो करनी है। सोचते ये हमारा हक है, जो सब कुछ हमें मिल रहा है ना, तो हमें मिलना ही चाहिए था, क्यों ना मिलता? इसको अपना हक समझते, इसी वजह से कोई शुक्रगुजारी भी नहीं और इसी वजह से तौबा ही नहीं है, क्योंकि जब हक समझ लिया तो क्या बुरा कर रहे हैं हम? क्या हो गया अगर हमने ये कर लिया? सारी दुनिया करती है, ये हमारा जवाब होता है। या दूसरा जवाब क्या होता है? तो क्या हो गया, अल्लाह गफूर रहीम है, बस। ऐसे लगता है जैसे कि काउंटर चल रहा है, आप यहाँ पे गुनाह करते जाएं, वहां पे कोई मशीन चल रही है कोई धोने की इसको, और वो गुनाह धुलते जा रहे हैं आमाल नामे से, खुद ब खुद एक मशीन वहां पे आमाल नामे धोने के लिए लगी हुई है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्लाह गफूर रहीम जरूर है, मगर उसके लिए है जिसको एहसास तो हो कि उसने गलत किया है, जिसके अंदर नदामत तो हो कि मैं क्या कर बैठी। वो रब उसकी नेमते और करम नवाजियां और एहसानात और मेरे जवाब में मैंने क्या कर दिया, उसके लिए गफूर रहीम, उसके लिए गफूर रहीम है कि जो खुद को हलकान करता है कि मुझे अल्लाह तेरी तरफ से बख्शिश की जरूरत है, इसके लिए खुद को थकाता है, पता चलता है कि हाँ इसको वाकई अल्लाह ताला की तरफ से बख्शिश की कितनी तलब है, जो वाकई अपनी रविश सीधी करता है, अपनी प्रायोरिटी स्ट्रेट करता है, उसके लिए हाँ वो जरूर गफूर रहीम। जो वाकई फिर अपनी इसलाह करता है कि ये मैंने गलत किया था, नहीं मैं रॉन्ग वे पे जा रही थी, मैंने नहीं इस रास्ते पे नहीं चलना, वो उसको छोड़ता है और सीधे रास्ते की तरफ आता है, पता चलता है कि अल्लाह ताला से बख्शिश चाहता है। और जो सिर्फ मुंह से बोलता रहे ये करना तो मैंने वही है जो कर रही हूं, हाँ वो गफूर रहीम है बस, यानी जान छुड़ाने को कह दिया वो तो माफ कर ही देगा ना, यानी उसको परवाह ही नहीं है, वो माफ उसने कर ही देना, कोई एफर्ट नहीं उसको मनाने की, कोई इस जिम्मेदारी का एहसास नहीं। कि देखो उसकी मोहब्बत, देखो उसके मेरे ऊपर एहसानात। तो अब मुझे भी कुछ करना है ना, मेरे पर भी तो कोई जिम्मेदारी है। गुनाह छोड़ने का ख्याल ही नहीं आता, कोई फिक्र ही नहीं होती। इस चीज की कोई फिक्र नहीं है कि अल्लाह ताला मुझसे कहीं नाराज तो नहीं है। क्या मुझे और आपको इस वक्त पता है कि अल्लाह ताला हमसे खुश है या नाराज है? किसको पता है? किसी को भी नहीं पता। अगर पता नहीं है तो बेफिक्री कैसे हो सकती है, जबकि हम गुनाह किए चले जा रहे हैं और दिन और रात कर रहे हैं। और हमारी जिंदगी क्या है? हमारी जिंदगी वो है जिसको कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो खुश रहो बस। बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है, अपने मुसलमानों को, यानी कोई फिक्र की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। ऐसे लगता है कि सब इनके मामला संभले हुए हैं, ऐसे लगता है कि इनको कोई इस चीज का परेशानी या इस चीज की फिक्र नहीं है कि अल्लाह के हाँ मेरा इस वक्त क्या मकाम है। वो कहते हैं नहीं, जाना तो एक दिन है ही, फिर फिक्र की क्या जरूरत है। हाँ ये जरूर है कि जाना एक दिन है ही, मगर सबका जाना एक जैसा तो नहीं होगा। किसी का जाना बहुत वहशतनाक होगा और किसी का जाना ऐसे होगा जैसे ईद का दिन होता है। लेकिन शैतान भुलाए रखता है, भुलाए रखता है और भुलाए रखता है। हमें कब होश आएगी, कब हम इस धोखे से निकलेंगे? अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं फरमाया कि ये दुनिया की जिंदगी क्या है, मताउल गुरूर है, धोखे का सामान है, धोखे में पड़े में सब सेट है, सब ठीक है। कितनी अच्छी थपकी दे दी ना शैतान ने, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। नहीं तुमने बुरा क्या किया जो तुम तौबा करो? कोई जब कोई बुरा ही नहीं किया तो फिर तौबा की भी जरूरत नहीं। नहीं तो लोग तो इतना इतना कुछ करते हैं, तुम तो सब ठीक ही हो। कितनी प्यारी लोरी सुनाई ना शैतान ने। तो फिर क्यों सहाबा कराम इतने हलकान होते थे? क्यों ताबीन, क्यों तबा ताबीन, क्यों नबी अलैहि सलातो वसलाम जिनके कोई गुनाह नहीं थे, कोई गुनाह नहीं थे, मासूम अनिल खता थे, क्यों वो दिन में 70 दफा भी आता है और 100 दफा भी आता है फरमाया कि मैं इतनी दफा तौबा इस्तग़फार करता हूँ? क्योंकि अल्लाह का हक नहीं अदा कर सकते। उसका हक तो ये है कि बिछे रहें उसके आगे, सजदे से सर ही ना उठाएं कभी। उसकी नियमतों का एहसास जिसको हो जाए वो तो कभी नहीं सर उठा सकता, लेकिन हम में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। ये हम हर वक्त 24 घंटे सजदे में ही पड़े हैं सारी जिंदगी। उसके तो ऐसे फरिश्ते हैं कि एक फरिश्ता जब से उसने पैदा किया वो सजदे में पड़ा हो, कयामत के दिन जब वो सर उठाएगा तो कहेगा अल्लाह तेरा हक अदा नहीं हो सका, तेरा हक नहीं अदा हो सका या अल्लाह। हालांकि फरिश्ते मासूम हैं, उनसे कोई गलती नहीं होती, लेकिन हक नहीं उसका कोई अदा कर सकता। कैसे हक अदा करें? इस दुनिया में एक माँ का नहीं हक अदा किया जा सकता, रब तो फिर भी बहुत बड़ी जात है। ये कहते हैं एक माँ का नहीं आप हक अदा कर सकते। तो आप खुद सोचें कि फिर हम उस जवाब में, हक तो अदा करना दूर की बात है, इस चीज को सोचने, ये सोच भी ना हर एक में नहीं आती कि कोई मैंने कोई अल्लाह का हक है मेरे ऊपर। उसका हक है कि मैं उसकी फरमाबरदारी करूं, उसका हक है कि मैं अकेले उसकी इबादत करूं और किसी के आगे ना झुकूं, उसका हक है कि मैं सिर्फ उससे डरूं और किसी से ना डरूं, उसका हक है कि मैं उस पे भरोसा करूं किसी और पे ना भरोसा करूं, उसका हक है, उसका हक है कि मैं एक लम्हे उसकी नाफरमानी ना करूं। अब ये हक भी कहाँ याद है, किसको याद है? ये याद नहीं, और उसके ऊपर क्या है, नाफरमानियों पे नाफरमानी। उसका तो हक ये था कि शुक्र ही अदा करते रहते, उसका शुक्र तो छोड़े, उल्टा नाफरमानी नाशुक्री करने लगे। कैसे? नाफरमानी करके। नाफरमानी करना अल्लाह की उसकी नाशुक्री है। नाफरमानी का दूसरा नाम नाशुक्री है। जी हाँ, जब इंसान अल्लाह ताला की बात, उसके हुक्म को तोड़ता है तो असल में वो उसकी नाशुक्री करता है। ये गुनाह करने ये ऐसे ही हैं, इनकी मिसाल समझ लें ऐसे है जैसे आप क्रेडिट कार्ड पे चीज ले लेते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है, पेमेंट करनी होती है, बिल आता है। ऐसे नहीं होता कि आप बस चीजें खरीदते रहें और कभी पे ही ना करें और पेमेंट बढ़ती चली जाए, ऐसे नहीं होता। गुनाह भी ऐसे हैं, जो गुनाह भी इंसान करता है ना, वो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, उसकी बादशाहत में कोई कमी नहीं आती। बस ये है कि इंसान को खुद उसकी कीमत चुकानी होगी। इसीलिए अल्लाह ताला नहीं चाहते कि इंसान को इसकी कीमत चुकानी पड़े किसी मुसीबत की सूरत में, क्योंकि उसकी कीमत क्या है, कैसे चुकाएंगे? नंबर 1, या तो तौबा कर लें तो ठीक है वो धुल जाए, या फिर कोई मुसीबत आएगी, कोई परेशानी आएगी जिससे वो धुलेगा। अब धोना तो है ना, अब पेमेंट तो करनी है ना, ये क्रेडिट कार्ड पे चार्ज कर लिया है, ये ऐसे ही तो नहीं होगा, पेमेंट करो इसकी। या घर में बच्चों में कोई ऐसे मसले आ जाएंगे कि जो इंसान को के लिए मुसीबत बन जाए, या अपनी जात में उसको कोई ऐसी तकलीफें आएंगी। अगर इस दुनिया में नहीं आती, अगर वो तौबा नहीं करता या और उसके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आई, अभी पेमेंट नहीं हुई उसकी, ठीक है, तो उसने तौबा ही नहीं की, ना कोई उसके ऊपर परेशानी आई, पेमेंट कैसे होगी? अब फिर यहाँ नेक्स्ट चीज है, अगली दुनिया के अंदर फिर उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, या तो कब्र में अजाब इस सूरत में पेमेंट करनी होगी, या आखरत में। आपको पता है कि बाज लोग जहन्नम में अपनी पेमेंट अदा करके फिर जन्नत में जाएंगे, हाँ जी, यानी अपने गुनाहों की सजा भुगत के, ये फिर आखिरी सूरत होगी। तो इंसान कितना नादान है ना कि गुनाह करते वक्त उसको ये याद ही नहीं रहता कि इसकी कीमत भी तो चुकानी है मुझे, करता रहता करता रहता। ये ऐसे ही नहीं मिट जाएंगे, इसकी कीमत देनी पड़ेगी। और ये सोचें कि रकम कम आपने क्रेडिट कार्ड पे चार्ज की है तो पेमेंट आसान है, और ज्यादा बढ़ जाए तो पेमेंट मुश्किल है। इसी तरह गुनाह है, गुनाह अगर थोड़े हैं और साथ साथ उनको तौबा के जरिए धो लिया जाता है तो फिर भी वही मामला खत्म हो गया, मगर अगर इंसान डिले करता है, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अभी तो मेरी बड़ी उम्र पड़ी, अभी तो मेरी जवानी है, बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे, हज पे जाऊंगी तो तौबा कर लूंगी, फलां वक्त में तौबा कर लूंगी, अभी ये इसका मजा तो ले लूं फिर तौबा कर लूंगी, और गुनाहों का अंबार लगता रहता है, ढेर लगता रहता है। हदीस में हमें पता चलता है कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल के ऊपर ना एक स्याह ब्लैक डॉट लग जाता है, अच्छा कपड़ों पे कई धब्बा लग जाए हमें बर्दाश्त नहीं होता, दिलों पे धब्बे लग जाए कोई परवाह नहीं है। अगर तो वो माफी मांग लेता है तो वो धुल जाता है, और अगर नहीं मांगता और एक और गुनाह फिर हो जाता है उससे, तो फिर क्या होता है, फिर एक और धब्बा लग जाता है, फिर नहीं माफी मांगता, फिर गुनाह हो जाता है, फिर एक और धब्बा लग जाता है। इसी तरह करते करते उसका दिल स्याह हो जाता है, और जब दिल स्याह हो जाए तो फिर तौबा की तौफीक कहाँ से मिलेगी। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि इधर नाफरमानी कोई हो गई, भूल चूक से हो गई, ये सोच समझ के नहीं कि हाँ अभी कर लेते हैं बाद में तौबा कर लेंगे, शादी का टाइम गुजर जाए तो फिर तौबा कर लेंगे, कितना आसान समझा हुआ है ना, आपको क्या पता उसके बाद तौफीक मिलती है कि नहीं। नहीं, बाज दफा जिंदगी भी होती है, ये नहीं मैं कह रही इंसान मर ही जाता है, जिंदगी होती है फिर तौबा की तौफीक ही नहीं होती, एहसास खत्म हो जाता है, तेरे इंसान को लगता नहीं तौबा की क्या इसमें, तो ऐसा तो नहीं कुछ मैंने किया, एहसास नहीं रहता। और ये भी होता है मोहलत ही नहीं रहती, और आज हम अपनी जिंदगी में इतने बिजी हैं ना कि हमें ये याद ही नहीं रहता कि हमने क्या गुनाह किया कल, या पास्ट में क्या कर चुके हैं, याद ही नहीं है, और आज क्या करते चले जा रहे हैं नहीं याद, तो क्या पता कि भूल ही जाए। तौबा की तौफीक ही ना अल्लाह ताला दे। तो जब इंसान से कोई गुनाह भूल चूक हो जाए, साथ ही माफी मांग ले। देखें आपके कीमती कपड़े होते हैं ना, बड़ा महंगा आपका सूट है, उस पर कोई चीज गिर जाए तो आप क्या इंतजार करती रहती हैं, अच्छा नहीं मैं बाद में धो लूंगी, नहीं आप उसी वक्त उठते हैं उसको साफ करते हैं, क्यों, कहते हैं अगर ये परमानेंट हो गया तो फिर धोने से भी साफ नहीं होगा, है ना, मगर किरदार पे, अखलाक पे इतने धब्बे लग चुके हो और हमें फिक्र ही ना हो, दिल बदनुमा हो चुका हो, सिया हो चुका हो और हमें फिक्र ना हो इसको साफ करने की। तो अगर आप कपड़े को उस वक्त नहीं साफ करते तो बाद में क्या होता है? जितना टाइम गुजरता जाएगा धब्बा पक्का होता जाएगा, और जब पक्का हो जाएगा ना, जब वो चीजें फिर आदत बन जाती हैं, वो गुनाह आदत बन जाते हैं, फिर अगर धोना चाहेंगे तो ब्लीच डालना पड़ेगा। हाँ, यानी फिर हो सकता है कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, कोई कब्र के अजाब की सूरत में, कोई बाद में किसी और हशर में सख्तियों की सूरत में, हो सकता है जहन्नम की आग की सूरत में, या हो सकता है दुनिया की कोई मुश्किलात, ये सारे ब्लीच हैं। धब्बे जितने पक्के होंगे उतना ही तेज ब्लीच इस्तेमाल करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा आंच देनी पड़ेगी जी। तो ये गुनाह जो है ना, ये मुसीबत है हमारे लिए, ये मुसीबत है, ये इतनी आसानी से ना जान नहीं छोड़ते, ये चिमट जाते इंसान के साथ, ये इंसान भूल जाता है, उसको याद भी नहीं रहता, लेकिन ये वो वहां हशर के मैदान तक पहुंच जाएंगे ये गुनाह, और वहां पे फिर डरावनी शक्लें बन जाएंगी हमारे लिए, ये चिपके होंगे, इनको आप उतारने की कोशिश करें सिर्फ तौबा से धुल सकते हैं और किसी चीज से नहीं। तो फिर कितनी तौबा करनी चाहिए, कितनी अपने आप की सफाई की कोशिश करनी चाहिए कि मैं यहीं पे धुल जाऊं, पाक हो जाऊं, ये ना हो कि मुसीबतें आए तो फिर मैं मुझे पाक करें, इसका वेट ना करें, देखें हैं अपने अंदर, झांकें कहां कहां कमियां की हैं, कहां कहां गुनाह की हैं, कहां कहां इसलाह की जरूरत है, कुछ सवालात अपने लिए लिख लें और खुद अपने आप को जवाब दें, मेरा गुस्सा कैसा है, मेरी अना कैसी है, मेरी जुबान कैसी है, मेरा दिल कैसा है, मेरे सुबह और शाम कैसे हैं, मेरे ताल्लुकात लोगों के साथ कैसे हैं, मेरे शौहर, मेरे बच्चों, इनके साथ मेरे रवैये क्या हैं, हकुकुल इबाद अदा करने में मैं कहाँ खड़ी हूँ, रिश्तेदारों के साथ मैं कैसी हूँ, फिर अपनी इबादात को जांचें, मेरी नमाज कैसी है, मेरा कुरान से ताल्लुक कैसा है, मेरे रोजों की क्या पोजीशन चल रही है, मेरे सदका और खैरात कितने हैं। एक बहुत छोटी सी मैं आपको चेकलिस्ट दे रही हूँ जिसमें बहुत थोड़ी सी चीजें हैं, अल्लाह ताला के पास तो हिसाब एक एक बोल का हो जाना है, जो याद है और जो याद भी नहीं है, एक एक हकदार के हक का हिसाब होना है जिसका पता है और जिसका पता नहीं है, और एक एक पाई का हिसाब बन जाना है जिसके खर्च का हमने कभी सोचा ही नहीं कि किधर खर्च कर दिया, बस उड़ गए, एक एक नमाज का, एक एक रोजे का, एक एक रिश्तेदारी का, एक एक नजर का जो उठी, एक एक निवाला जो खाया, एक एक कदम जो उठा, एक एक नेमत जो इस्तेमाल की, और एक एक चांस जो मिला और जाया कर दिया, हत्ता कि एक एक सांस का भी हिसाब होगा, एक एक सांस। तो ये तो बहुत छोटी सी सरसरी सी चेकलिस्ट है, अगर इसमें ही कम से कम देखें खुद को कितने नंबर देते हैं, जब दिल की बातों को खोलेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा, दिल में तो बड़ा कुछ बैठा हुआ है, खैरख्वाही है या बदख्वाही है लोगों की, इल फीलिंग्स हैं लोगों के लिए, कीने हैं, बुग्ज हैं, या क्या क्या सब चीज़ें अंदर हैं ना, दिलों में ही होती हैं, हसद है या क्या क्या है, फखर है, तकब्बुर है, क्या क्या चीजें, वो सारी इसके अंदर ही है। जुबान को खोलेंगे तो वो एक अगेन एक बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, उसी से तो बहुत सारी चीजें उसके साथ लगी हैं जिनकी हमने बात भी की थी अपनी पहले लेक्चर में, तो अपनी अनाएं खोलेंगे तो फिर वो भी पता चल जाएगा, अपने ताल्लुकात खोलेंगे तो वो भी एक अलग ही दुनिया होगी। तो वो ज़रा ऑनेस्टली खुद को हम खुद नंबर दें और फिर उसके बाद सोचें कि कितनी तौबा इस्तग़फ़ार की मुझे ज़रूरत है और कितना ज़्यादा मुझे नेकियों में दौड़ने की ज़रूरत है, जो वक्त मिल रहा है ना बड़ा ही कीमती है, जो गुजर गया नाफरमानी में वो गुजर गया, अब कैसे फरमाबरदारी में गुजारूं। और याद रखिएगा आखरत में मेरा और आपका हिसाब सिर्फ रमजानों का नहीं होना, या जिलहज्जा के अशरों का नहीं होना। खैर ये अशरा तो हमें एक नए तरीके से हम गुजार रहे हैं, जो पहले तो हमें पता ही नहीं था जिलहज्जा के अशरों का भी, वो तो गुजर गए ना। तो चलो ज्यादा से ज्यादा हमने रमजान अच्छे गुजारे होंगे। तो रमजानों का नहीं सिर्फ हिसाब होना, रमजान तो जिंदगी में कितने देख लेगा कोई, 60 70 80, और उनमें भी आधा टाइम तो बचपन में गुजर गया, आधा टाइम खेल कूद में गुजर गया, आधा टाइम जवानी की मस्तियों में गुजर गया। तो वो जब कहीं होश आया तो उस वक्त के रमजान के लिए क्या सिर्फ उनका हिसाब होना। तो अगर तो सिर्फ इनका हिसाब होना होता ना, जो हमने अच्छे रमजान गुजारे हैं, फिर तो बड़े अच्छे नंबर ले लेते, क्योंकि उनमें वाकई सबने कोशिश की होगी फरमाबरदारी की। मगर मसला यह है कि हिसाब सारी जिंदगी के हर दिन का है, साल के हर महीने का नहीं है, सिर्फ हर हर लम्हे का है। और एक महीना सही गुजार के हम सोचते हैं बाकी 11 महीने बस ठीक हो गए, अब जो मर्जियां करो बाकी 11 महीनों में। रमजान जो अच्छा गुजार लिया, गोया कैद से निकल गया, अब आजादी है। ये भी हमने अशरा जिलहज्जा में जो भी इस वक्त हम काम कर रहे हैं, इनमें सारा उतना नहीं भी सही, मगर उनमें से हर एक काम को थोड़ा थोड़ा जारी जरूर रखना, छोड़ना नहीं है। गुनाहों से बचने की जो कोशिश आजकल हम कर रहे हैं, इसको भी जारी रखना। आजकल देखें हम सहरी के लिए उठते हैं, तो कितना अच्छा हमारे लिए मौका है कि हम उठ के नफल अदा करें, अल्लाह ताला से रो रो के तौबा करें, माफी मांगे। अल्लाह ताला को बंदे का यूं गिड़गड़ाना इतना ज्यादा पसंद है कि बाज़ जगहों पे आता है कि अल्लाह ताला को तस्बीह करने वाले की सुबहान अल्लाह की आवाज़ों से भी ज्यादा ये गुनाहगारों का रोना महबूब है। क्यों क्यों अल्लाह को इतना अच्छा लगता है उनका रोना? क्या अल्लाह को रुलाना अच्छा लगता है किसी को? नाउज़ु बिल्ला, नहीं ऐसी बात नहीं है। आपको मैं इसके पीछे बात बताऊंगी ना, तो शायद आपको खुद भी रोना आ जाए। वो ये कि देखें, अगर कोई किसी का प्यारा हो, मसलन आप ये सोच लें कि हम सब वालदैन हैं, ठीक है, वालदैन के मसलन सारे बच्चे बड़े फरमानबरदार हैं, मगर एक बच्चा जो है ना वो बिगड़ गया है, वो इतना बिगड़ गया कि वो घर ही छोड़ के चला गया, वो इतना दूर चला गया वो पलटता ही नहीं है, अरसा गुजर गया, वो माँ बाप को भूल गया, उनके एहसानात को भूल गया, गलत कामों में पड़ गया, सियाकारियां करने लगा। तो माँ बाप के गम का अंदाजा कर सकते हैं आप कि वो उनको कैसा लगता होगा, और वो उसके इंतजार में रहते हैं कि कब हमारा बच्चा वापस आ जाए, वो उसकी राह तकते रहते हैं, कभी तो लौट के आएगा। और एक दिन दरवाजे पे दस्तक होती है और वो दरवाजा खोलते हैं तो बच्चा खड़ा होता है, वो माँ बाप से चिमट जाता है और रो रो के कहता है, आप मुझे माफ कर दें, मैं कभी अब आपसे दूर नहीं जाऊंगा। आप बताएं माँ बाप को उस वक्त क्या सब बच्चों में वो बच्चा प्यारा नहीं लगेगा? वो सब तो पहले ही अपने थे, मगर ये तो दूर चला गया था ना। सोचे उन माँ बाप की खुशी का क्या अंदाजा होगा इसके वापिस आने पर। अल्लाह की कसम खा के मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से इससे भी ज्यादा खुश होता है जितना माँ बाप अपनी औलाद के लिए खुश होते हैं। वो इतना करीम है, ये होता है गफूर और रहीम होना। मगर उसके लिए इंसान को पलटना है, आना है, तब वो अपनी रहमत की चादर में उसको समेट लेगा। उसके तो सिर्फ ये बहाने हैं, कभी रमजान लाता है, कभी अशरा जिलहज्जा लाता है, कभी मुहर्रम लाता है, कभी लैलतुल कदर का बताता है कि मेरे बंदे कभी तो तुझे ख्याल आ जाए और तू सोच ले कि बस हो गई, अब चलता हूं वापस, अब लौट जाता हूं, कभी तो मेरे बंदे तुझे याद आ जाए कि तेरा एक रब था जिसने तेरे ऊपर बड़े एहसानात किए, कभी तो तुझे एहसास हो जाए कि तू किस जात को, कितनी करीम जात को छोड़ के और दूर चला गया, कभी तो सोच आ जाए जब तू दुनिया के धक्के खाए तो तुझे कभी तो सोच आ जाए कि वो मेरा रब कितना कदर करने वाला है, जिसने मेरी सारी कमियों कोताहियों के बावजूद मुझ पे नेमतों की बारिश कर रखी है। तभी तो ये एहसास हो जाए। तो ये नेकियों के मौसम है, ये जो दिन है ना, ये सिर्फ आपको बुलाने के अल्लाह के तरीके हैं, अपने से करीब करने के बहाने हैं। और हम फिर भी अगर इन्हीं दुनिया के झमेलों में ही पड़े रहे, हमारे सारा दिन काम ही नहीं खत्म होते। काम तो घरों के जितने मर्जी निकालो, आप अभी जाके शुरू हो जाए आप अपनी अलमारियां साफ करने, अपना फ्रिज साफ करने, अपना गैराज साफ करने, काम तो नहीं कभी खत्म होने। तो हम नाकदरी करते हैं इन दिनों के। तो जब भी आपको ये ख्याल आ जाए ना, तो एक दफा दुपट्टे में मुंह डाल के कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ दिल में ही चाहे अल्लाह से बात करें, क्या है गफूर रहीम जात, ऐ मेरे रब, मैं तो बहुत कमजोर हूं, ना मैं दुनिया के कोई अजाब सह सकती हूं, ना आखरत के, ना दुनिया की परेशानियां और मुसीबतें सहने की मेरे अंदर ताकत है, और ना आखरत की। तो तुम मेरी तौबा को कबूल कर ले और मुझे माफ कर दे। इस वक्त जो आंसू आपके गिरेंगे वो प्राइसलेस है, वो आंसू दुनिया के किसी तराजू में तुल नहीं सकते, वो अल्लाह के यहां मोतियों से भी ज्यादा कीमती है, और इन आंसुओं को अल्लाह संभाल के रख लेता है। इन आंसुओं का कीमत, इन आंसुओं का अजर जो है ना, ये फरिश्ते लिख नहीं सकते, एज इट इज लिख देते हैं। अल्लाह इनका बदला देगा, क्योंकि ये आंसू क्यों कीमती हैं, इसलिए कि ये इस एहसास के साथ निकले, इस पशेमानी में निकले कि मैं क्या कर बैठा, वो रब कैसा है और मैंने क्या किया। ये आंसू फिर बड़ा कीमती होता है, ये जो अल्लाह की मोहब्बत में निकलता है ना, कि अल्लाह तू इतना मेहरबान, तू माओ से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला, और मैंने ये क्या किया, मैंने तेरे हक में कितनी कोताही की अल्लाह। ये वो शर्मिंदगी के आंसू हैं जो अल्लाह को फिर बड़े पसंद है। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को पलट आए, तो उसको भूला नहीं कहते। तो हम भूल गए थे अल्लाह, हम खो गए थे कहीं, हम गुम हो गए थे, हम वापस आना चाहते। तो वो रब आपकी राह तक रहा है, वो आपका इंतजार करता है। तो क्या वो रब्बे कायनात जो है वो इंतजार कर रहा हो, और हम कहें नहीं अभी नहीं तौबा करने, अभी तो मैंने ये करना है, अभी तो मेरे पास नहीं टाइम, अभी तो मुझे फला फला मेरे प्लान्स हैं, ये कहेंगे क्या? नहीं, आज ही पलटेंगे, जो हो चुका वो हो चुका, आज ही तौबा करेंगे। और सजदे में गिर के तौबा कीजिए, अपनी नमाजों के सजदों को जिंदा करें दुआओं के साथ, उनमें अपने लिए तौबा इस्तग़फ़ार की दुआएं कीजिए, आज की जो दुआ है। लेकिन दुआओं तो बहुत सारी हैं, और तौबा की भी बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारे कलिमात हैं, लेकिन बाज़ तौबा के कलिमात ऐसी हैं कि वो दूसरों से भी ज़्यादा बढ़ के हैं, क्योंकि उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई उनकी फजीलत बयान की है। जैसे कि आयत करीमा है, हमने तो उसको खैर समझा ही हुआ है ना कि वो तो बस हमारे मसले कोई हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, बस आयत करीमा पढ़वा लो, वो इसलिए नहीं है। ऐसे वो तौबा की बड़ी प्यारी दुआ है। इसी तरह जो आज मैं आपको दुआ बताने जा रही हूँ, ये भी तौबा के लिए बहुत प्यारी दुआ है, और ये इतनी खूबसूरत दुआ है कि इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये कहेगा अल्लाह ताला उसको बख्श देता है, चाहे वो लड़ाई से भागा हो, यानी जंग के मैदान से भागना एक कबीरा गुनाहों में से है, तो चाहे उसने कबीरा गुनाह भी किया हो, अल्लाह ताला उसको भी माफ कर देता है। वो दुआ क्या है आप मेरे साथ कहिए, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी, क्या है, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। पहले तो ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी, मैं استغفار کرتی ہوں، معافی مانگتی ہوں اس ذات سے جس کے، اس اللہ سے، وہ ذات کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ حی اور قیوم ہے، اور ہو سکتا ہے یہ اسم اعظم ہوں. وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور میں توبہ کرتی ہوں اس کے حضور. تو یہ پیاری دعا ہے، اس کے ذریعے سے دیکھیں، ویسے تو آپ ندامت کے ساتھ جب آتے ہیں نا، تو آپ صرف توبہ استغفار بھی کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے یہ نہیں دیکھتا اس کو کون سی لینگویج آتی ہے، اس کو عربی آتی کہ نہیں آتی، اس کو کون سے الفاظ آتے ہیں. بس آپ نے جب سچے دل سے جس دن توبہ کی نا، تو وہ آپ کوئی لینگویج میں بھی کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور جھوٹی توبہ کے لیے کوئی دل میں احساس ہی نہیں ہے، اور بس کلمات کو بس ایک وظیفے کے طور پہ پکڑ کے تسبیحاں کرتے جانا کرتے جانا، تو وہ تو پھر آپ 100 دفعہ بھی بول دیں گے نا، یا 125,000 دفعہ بھی پڑھ لیں گے، تو وہ توبہ نہیں ہے، پھر صرف منہ کی باتیں ہیں. جیسے میں نے آپ کو اس دن کلمے کا بتایا تھا نا، اس طوطے کی طرح نہیں پڑھنا جس طوطے نے صرف زبان سے پڑھا تھا، دل سے نہیں. اسی لیے جب اس کی جان نکلنے لگی تو اس کی زبان پر کلمہ نہیں آیا، کیونکہ کلمہ صرف وہ ٹر ٹر بولتا تھا. ہم نے توبہ اس طوطے کی طرح نہیں کرنی جس کو پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے احساس کے ساتھ کرنی ہے. اسی طرح اللہ کو منانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا، نوافل آپ ادا کریں. نوافل ادا کرنے سے بھی جو سجدہ ہے نا، یہ بھی انسان اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. ہم دور ہو گئے گناہ کر کے، قریب ہونے کا طریقہ ہے سجدہ کرنا. اور میں نے آپ کو چند ایک نوافل بتائے بھی تھے. دیکھیں یہ پڑھنے سے بڑا فائدہ اس لیے ہے کہ دیکھیں، جب ہم نے کوئی بھی نفل ادا کرنے ہوتے نا، تو ہمیں وضو بھی کرنا ہوتا ہے، تو وضو کا الگ اجر، اس سے بھی گناہ جھڑتے ہیں، چہرے کے گناہ جھڑ رہے ہیں، منہ کے گناہ جھڑ رہے ہیں، کانوں کے جھڑتے ہیں، جہاں جہاں آپ کا وضو کا پانی جا رہا ہے ادھر کے گناہ جھڑ رہے ہیں. پھر آپ وضو کر کے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، آپ جب شہادتین دیتی ہیں تو آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں وضو کے کتنے فائدے ہو گئے، صفائی ستھرائی تو الگ بات ہے. اسی طرح آپ نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ انتظار بھی کریں گے تو فرشتے انتظار بھی کریں گے تو آپ کے لیے نماز کا اجر لکھا جائے گا، اور نماز کے بعد بیٹھے رہیں گے مصلے پہ تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے. مگر وہ بیٹھنا یہ نہ ہو کہ بیٹھ گئے ہیں تو اب بیٹھے میں تو آپ موبائل پہ اپنے میسج چیک کرنا شروع ہو جائیں، نہیں، وہ بیٹھے میں تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھے لیٹے کھڑے ہر حال میں، اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں. تو آج آپ جو پڑھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مغرب کی جب اذان ہو، اس کے اور اقامت کے درمیان، اب ہم تو گھروں میں پڑھتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہے کہ جلدی، کیونکہ جلدی ہی اقامہ ہو جاتا ہے نا، بہت دیر بعد تو نہیں ہوتا، آدھے گھنٹے بعد، 15-20 منٹ بعد تو نہیں ہوتا. جو کر سکتا ہے تو روزہ کھولتے ہی تو وہ پہلے یہ 2 نفل ادا کر لے، جس کو ہم کہتے ہیں سنت غیر موقعہ. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، پہلے نمبر پہ ٹاپ پہ فرض ہے، اس کے بعد سنت موقعہ جو آپ کو 12 بتائی تھی، اور اس کے بعد غیر موقعہ. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہیں پڑھی ہیں، مگر ان کے اجر بہت ہیں. اب دیکھیں اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صلو قبل صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھ لو، یعنی مغرب کی اذان ہو جائے تو 2 رکعتیں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں. تو صحابہ اتنی کثرت سے یہ پڑھتے تھے کہ کوئی باہر سے آنے والا سمجھتا تھا شاید باجماعت نماز ہو چکی ہے، یعنی یہ بعد کے پڑھ رہے ہیں سنتیں. اسی طرح عشاء کے بعد آپ 4 رکعت پڑھیں، جیسے 2 رکعت تو آپ سنت موقع پڑھتے ہی ہیں نا، اور 2 باقی کو ہم نفل کہہ دیتے ہیں، تو وہ نفل وہ یہی ہیں. اگر آپ آلریڈی پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ अदरवाइज आप दो नफल भी ऐड कर लें, या दो मतलब गैर मुअक्कदा सुन्नतें हैं उनको ये कह सकते हैं, तो इसका क्या है अजर? इसका कयामुल लैल के बराबर अजर है, यानी अगर कोई कयाम के लिए नहीं उठ सकता रात के कयाम के लिए, तो वो ये 4 रकतें पढ़ लें। तो आप उठते भी हैं तब भी पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। और आखिरी तहाई रात को अपने लिए गनीमत जाने, उसमें ज़रूर आप तौबा इस्तग़फ़ार करें। वो वाकई टाइम ही तौबा का है, वो टाइम ही अल्लाह से मांगने का है। तन्हाई भी होती है, खामोशी भी होती है, कंसंट्रेशन भी कर सकते हैं, तो उस टाइम को हमने ज़ाया नहीं करना। अगर आप आगे पीछे नहीं भी जागते उस टाइम पे, तो कम अज़ कम इन दिनों में ज़रूर ये करें। ये बेस्ट डेज़ हैं, इनमें थोड़ा सा भी आप ज़्यादा कदम बढ़ाएंगे ना, एक भी कदम आपने आगे कर लिया, तो अल्लाह ताला आपकी तरह 10 कदम बढ़ के आएगा। इसलिए आप कम अज़ कम एक कदम तो बढ़ाएं ना। देखें इस्तग़फ़ार के आप बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे। अपनी तो गुनाह धुलते ही हैं, ज़ाहिर है इंसान, मैंने आपको बताया, वरना तो कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अगर कीमत चुकाने से आप डरते हैं और नहीं चाहते, तो तौबा करनी पड़ेगी। और एक फ़ायदा और जो हमें बहुत ज़बरदस्त मिलता है, कि हदीस में आता है, जो शख्स इस्तग़फ़ार को अपने पर लाजिम कर लेता है, यानी उठते बैठते अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम, एक ऐसे ही अपना बना लें अगर हम, एक तरीका, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे पर रहम कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह रहम कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह रहम कर दे, यानी अपने ऊपर लाजिम कर ले, तो अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। कितने ज़िंदगी में मसाइल होते हैं ना, हर मसले से निकलने का अल्लाह रास्ता बना देगा। और नंबर 2, सिर्फ इतना नहीं है, नंबर 2 हर गम और परेशानी से उसको निजात देता है। अभी आपने कोई दुआ नहीं की, कोई परेशानी की, इसीलिए तो आयत करीमा के ज़रिए हम अपने मसलों को हल करने के लिए कोशिश करते हैं ना, क्योंकि हालांकि वो है इस पर्पस के लिए नहीं, वह तो तौबा के लिए, मगर जब इंसान तौबा करता है उसके मसले हल होते हैं। कोई भी तौबा इस्तग़फ़ार के कलिमात करता है, उसके मसले हल होंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया हर गम और परेशानी से उसको निजात देता है। और नंबर 3, उसको ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाता है जहां से उसको गुमान भी नहीं होता कि यहां से मुझे कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए तौबा इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़े इन दिनों में, सदका करें। देखिए खानदान में कोई ऐसे आसपास कोई यतीम है, कोई बेवा है, उनकी ईद कैसी होगी, उनके लिए पैसे कुछ भिजवा दीजिए, जितने भी आप अफोर्ड कर सकते हो। अपने रिश्तेदारों में खर्च करने का डबल सवाब है, एक तो सदक़े का और एक रिश्तेदारी का। अगर रिश्तेदारों में कोई नहीं है, तो जान पहचान वालों में कहीं भी कोई देखें, कोई यतीम, कोई बेवा, इनके लिए दौड़ धूप करने वाला ऐसा है जैसे अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने वाला, इतना बड़ा अजर है। या जैसे दिन को रोज़ा रखने वाला, रात को क़याम करने वाला, इतना बड़ा अजर है। ख़ास तौर पे बेवा मिस्कीन यतीम के लिए, दौड़ धूप करने वाले के लिए। और आज का ज़िक्र है तकबीरात, जो इस अशरे का ख़ास ज़िक्र है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ बता दी, तो उसके बाद हमारे पास कोई और गुंजाइश नहीं कि हम कोई और चीज़ अपनी तरफ से करें। तो इंशाअल्लाह ताला तकबीरात आप कहते रहेंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा, والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا। अल्लाह ताला हमसे ये नेकियां करवा ले इखलास के साथ, और हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला इन हमारे छोटे छोटे कामों को महफूज कर ले अपने यहाँ, और अल्लाह ताला जब हम उसके पास पहुँचें, तो अपनी शान के मुताबिक इनका अजर अता फरमाए। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही, तो फिर कल आपसे मुलाकात होगी, ठीक है, एक नए प्रोग्राम के साथ। नहीं, कल नहीं होगी, कल जुमे का दिन है, कल हमारी तफसीर की क्लास है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें, तो अभी से 4 घंटे पहले, आप जिस मोड पे भी सुन रहे हैं, आप वहाँ पे आके हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो फिर हम सैटरडे को मिलेंगे।
सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।